There's a truth for you. कृपा करून बसा. कृपया बैठिए. प्लीज सिट डाउन. कृपा करे बसुन. आगे पुट वापस. हरे कृष्ण. आप सब तो जानते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोक और ग्रह हैं. बहुत विशाल है ये एक भौतिक ब्रह्मांड. ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और सारी भौतिक सृष्टि बहुत विशाल है और इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते. परंतु ये भौतिक सृष्टि सब कुछ नहीं है. इस भौतिक सृष्टि के परे एक आध्यात्मिक आकाश है जिसको परव्योम कहते हैं. और इस परव्योम में कई आध्यात्मिक लोक हैं जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं. ये है वैकुंठ जगत. और वहां के लोक पूरी तरह से सच्चिदानंद है और हरेक लोक में भगवान के एक अवतार भगवान के एक विस्तारित रूप निवास करते हैं उनके भक्तों के साथ. तो इन लोकों के भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे अच्युत लोक, विष्णु लोक, जनार्दन लोक, उपेंद्र लोक, त्रिविक्रम लोक इत्यादि. क्योंकि वहां निवास करने वाले जो प्रमुख रूप हैं भगवान के उनके ये नाम है अच्युत, जनार्दन, त्रिविक्रम, उपेंद्र इत्यादि. ये चतुर्भुज रूप हैं भगवान के. षडैश्वर्य पूर्ण भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ इन लोकों में निवास करते हैं. यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि बिल्कुल नहीं है, केवल प्रेम है यहाँ पर. और जो जीव भगवान के साथ इन वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं उनका भी ऐश्वर्य, उनका भी रूप भगवान के समान ही है. और ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं है. और अलग अलग वैकुंठ लोकों को हम नाप भी नहीं सकते हैं. ऐसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु दिखलाते हैं. इन वैकुंठ लोकों में से एक सर्वश्रेष्ठ लोक है जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं. गोलोक वृंदावन में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में नहीं रहते हैं. भगवान अपने मूल द्विभुज कृष्ण रूप में रहते हैं. तो ये गोलोक वृंदावन सबसे महत्वपूर्ण लोक है सारे आध्यात्मिक जगत में. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि सारे आध्यात्मिक जगत का आकार एक कमल पुष्प के समान है. पर आपने कमल पुष्प को देखा होगा. कमल पुष्प में जो सबसे बीच वाला भाग है थोड़ा ऊपर होता है, तो बीच वाला भाग जो है ये गोलोक वृंदावन है, और जो पंख है जो उस बीच वाले भाग को घेरे हुए हैं वो है वो अनंत कोटि वैकुंठ लोक। तो ये है आध्यात्मिक जगत, और इसके बाहर है, बल्कि इस आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में है ये सारी भौतिक सृष्टि जिनमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हरेक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है, और हरेक लोक में अनंत कोटि जीव है। तो हम कल्पना कर सकते हैं, बल्कि नहीं कर सकते हैं, कि भगवान की सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक कितनी बड़ी है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के तीन प्रमुख निवास स्थान हैं। एक है उनका बाह्य स्थान, निवास स्थान, जो कि है ये भौतिक सृष्टि, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान हर कण में रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हर अणु में भगवान निवास करते हैं, और सारे ब्रह्मांड में भी हैं। तो ये भगवान की जो भौतिक सृष्टि है ये उनका बाह्य निवास स्थान है, एक्सटर्नल अबोर्ड। एक साधारण आदमी के भी कई घर हो सकते हैं, खास करके जब कोई व्यापार के लिए या कोई अमीर आदमी होता है तो हो सकता है उसका एक घर बंबई में है, एक घर लोनावला में है, एक घर ऊटी में है, एक घर शिमला में है, ऐसा होता है। एक साधारण आदमी के ऐसे निवास स्थान हो सकते हैं, तो भगवान के क्यों नहीं? भगवान तो सब जगह निवास करते हैं, सर्वव्यापी है भगवान, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ की भगवान नहीं रहते। इसलिए हर जगह भगवान का निवास स्थान है, परंतु ये भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में अंतर है, इसलिए इस भौतिक सृष्टि को भगवान का बाह्य निवास स्थान कहा गया है। और आध्यात्मिक सृष्टि के भी दो भाग हैं, एक है वो वैकुंठ लोक जिनका वर्णन हमने किया, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, उपेंद्र लोक इत्यादि, ये भगवान के का मध्यम निवास स्थान बताया जाता है, बीच वाला है। और फिर जो गोलोक वृंदावन है वो भगवान का अंदरूनी निवास स्थान, उनका गुप्त निवास स्थान है, इंटरनल अबोर्ड, क्योंकि ऐसे निवास स्थान में वो वास्तव में अपने सबसे निकट के भक्तों के साथ निवास करते हैं, सबसे प्रेमी भक्त, उनका सबसे प्रिय स्थान है ये गोलोक वृंदावन। जैसे भले एक आदमी अपना समय अलग अलग स्थानों में बिताए, लेकिन एक स्थान जो उसका मूल घर होता है वो उसके लिए सबसे प्रिय होता है। उसी प्रकार से हालांकि भगवान के तीन प्रकार के निवास स्थान हैं, और हर क्षण सदैव वो इन तीनों निवास स्थानों में निवास करते हैं, फिर भी इन सब में से गोलोक वृंदावन उनका मूल निवास स्थान है और भगवान के लिए सबसे प्रिय है, क्योंकि यहाँ भगवान अपने मूल रूप में निवास करते हैं। अन्य स्थानों में भगवान अपने विस्तारक रूप में निवास करते हैं, अपने अवतारों के रूप में निवास करते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान जैसे हैं वैसे अपने मूल रूप में रहते हैं, विविज रूप में, स्वयं भगवान श्याम सुंदर गोविंद नंदनंदन श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं एक श्लोक, गोलोक नामनी निज धामनी तलेच तस्य, ये श्लोक आप सबको मालूम है ना, हम सब साथ में गाएंगे,
गोलोक नामनी निज धामनी तलेच तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु एते प्रभाव निशया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक धाम निज धाम, ये भगवान का निज धाम है,
और उसके तले देवी महेश हरिधाम से पेश पेशो। तो सबसे पहले है देवी धाम। देवी धाम मतलब ये भौतिक जगत जहाँ दुर्गा देवी राज्य करती हैं, माया देवी, और सबको अपने वश में करके रखती हैं। यहाँ भौतिक जगत में सारे प्राणी माया देवी के वश में हैं, तो इसलिए इसको देवी धाम कहते हैं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के तट पर है शिवलोक, इसलिए इसको महेश लोक कहते हैं। और उससे आगे है वैकुंठ लोक। उन वैकुंठ लोकों से परे हैं गोलोक। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान के निवास स्थान की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, लेकिन सबसे प्रिय है श्री कृष्ण। जो वास्तव में श्री कृष्ण को जानना चाहता है वो गोलोक वृंदावन में जाता है। जिस प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो अलग अलग जगह में आप उनसे बात कर सकते हैं, आप किसी को उनके दफ्तर में मिल सकते हैं, कहीं आप जाकर उनको क्लब में मिल सकते हैं, किसी विवाह के अनुष्ठान में मिल सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप किसी आदमी को पहचानना चाहते हैं तो आप उनको घर में जाकर मिलिए, क्योंकि उनके घर में वो सबसे आराम की स्थिति में होंगे। वो जैसे हैं वैसे आप उनको मिलेंगे घर में। जब व्यक्ति बाहर रहते हैं, कोई बाहर रहता है तो अलग अलग स्वरूप धारण करता है, कभी ऑफिस में जाता है तो सूट टाई में रहता है तो यस सर नो सर करना पड़ता है उसको, सब लोग उसको करते हैं यस सर नो सर, तो वो अलग भाव में रहता है। लेकिन वो जैसे है उसका मूल भाव अगर आपको जानना है तो आप उसको घर में जाइए तो आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से वास्तव में भगवान क्या है मूल रूप से अगर आपको जानना है तो आप गोलोक वृंदावन जाइए, और वहां पर भगवान अपने सबसे निकट प्रेमी भक्तों के साथ ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जो कि अन्य किसी भी लोक में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते हैं, वो ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, अपने माता यशोदा और अपने पिता नंद महाराज के लाडले पुत्र के रूप में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये सारी जो लीलाएं हैं ये केवल गोलोक वृंदावन में दिखाई पड़ती हैं, ये सब अन्य लोकों में नहीं दिखाई पड़ती, आध्यात्मिक जगत में भी। इसलिए गोलोक वृंदावन बहुत ही विशेष है, और यही गोलोक वृंदावन यहाँ इस धरातल पर ये भौम वृंदावन के रूप में है। जिस वृंदावन में हम बैठे हैं वो वही वृंदावन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये सारी लीलाएं करते हैं। हम वर्तमान काल का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के धाम में भगवान की लीलाएं नित्य रूप से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल थोड़े समय के लिए चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, नहीं, प्रकट रूप से थोड़े देर के लिए चलती हैं फिर अप्रकट रूप में तो भगवान के धाम में ये लीलाएं हमेशा के लिए चलती रहती हैं। तो वही गोलोक वृंदावन अब यहाँ है, भगवान का अंदरूनी धाम जो है गुह्य धाम, ये सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस वृंदावन धाम को इस रूप में समझना इतना सुलभ नहीं है। जो वर्णन हम पढ़ते हैं शास्त्र में वृंदावन के बारे में, हमारे स्थूल आंखों को वृंदावन ऐसे नहीं लगता है। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वृक्ष आदि होते हैं हम देखते हैं, और खासकर जब हम अंदर की जगह जाते हैं तो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ यहाँ देखते हैं। ऐसे कोई पंडे आके हमें परेशान करते हैं, जो गंदगी देखते हैं या भीड़ देखते हैं, तो हमें लगता है कि कैसे सब वृंदावन में हो सकता है। वास्तव में वृंदावन कभी बदलता नहीं है, वृंदावन वृंदावन ही रहता है, वृंदावन कभी भी प्रदूषित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से गंगा का जल है या यमुना का जल है, जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि गंगा और यमुना का जल चिन्मय है, आध्यात्मिक है, पवित्र है, शक्तिमान है, और जो भी इस जल में स्नान करेगा, इसका एक बूंद भी लेकर अपने सर पर छिड़काएगा, वो व्यक्ति अपने अनेक पापों को नष्ट कर देगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस बात को नहीं देखते हैं कि इस जल में कोई गंदगी है या नहीं। अगर भौतिक गंदगी हो भी, उस गंदगी को हटाकर फिर भी वो जल में स्नान करके फिर वो बाहर आते हैं। कोई भौतिक गंदगी उस जल में है, इसकी वजह से जल की शक्ति कम नहीं होती है, जल की पवित्रता कम नहीं होती है। गंगा का जल या यमुना का जल उतना ही पवित्र, उतना ही शक्तिशाली रहता है, चाहे उसमें कोई भौतिक गंदगी हो या न हो। आध्यात्मिक बल किसी भौतिक प्रदूषण से ढका नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए 5000 वर्ष पूर्व, हालांकि वो सबके सामने उपस्थित थे, राक्षस सुर असुर सब उनको देख पाए, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उनको पहचान पाए। दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, अर्जुन ने भी देखा, लेकिन अर्जुन जान पाया कि कृष्ण कौन है, लेकिन दुर्योधन नहीं जान पाए। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्, कि जो लोग मूढ़ हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो तत्वतः आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनके आंखों के सामने मेरे माया का पर्दा होता है, जिसकी वजह से मुझे देखते हुए भी मुझे पहचान नहीं सकते हैं ये लोग। तो भगवान हालांकि साक्षात उनके सामने होते हैं, फिर भी वो पहचान नहीं सकते, भगवान में दोष देखते हैं, लेकिन भगवान कभी प्रदूषित नहीं हो सकते हैं। भगवान अपने स्तर में ही रहते हैं, हालांकि वो साधारण आदमी के समान उठते बैठते हैं, सारे जन साधारण, फिर भी भगवान भगवान ही रहते हैं, उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उतने ही पवित्र रहते हैं जितना कि पहले थे। और एक उदाहरण, भगवत गीता ये तो पवित्र ग्रंथ है, और 9वें अध्याय जो है गीता का क्या है, राज विद्या राज गुह्य ज्ञान। तो ये राज विद्या है, लेकिन राज गुह्य ये बहुत गुह्य ज्ञान है, ऐसे बताते हैं कृष्ण, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये ज्ञान बहुत ही गुह्य है, ऐसे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परंतु गुह्य किस बात के लिए है? ये ग्रंथ तो सभी जगह उपलब्ध है, जितने भी पुस्तकालय हैं सारे विश्व भर में, अवश्य इनमें आप भगवद गीता तो पाएंगे ही पाएंगे। लाखों कोटि कोटि लोगों के घर में भगवद गीता ग्रंथ आपको मिलेगा, सब जगह ये ग्रंथ उपलब्ध है, तो गुह्य किस लिए है? ये गुह्य इसलिए है कि हालांकि ये भक्त ये जो ग्रंथ है सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। तो कौन समझ पाएगा? भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम जीवत उत्तमम। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, ये भगवद गीता जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये एक उत्तम रहस्य है, और केवल तुम इसको समझ पाओगे, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो। अन्य लोग जो मेरे भक्त नहीं है, वो इस भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवद गीता में इतने ऐसे कितने सारे अन्य चीजें हैं भक्ति के अलावा, केवल इसीलिए ताकि जो लोग भक्त नहीं हैं, वो भ्रमित हो जाए, कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, ये योग, वो योग। अभी भगवत गीता है क्या? ये तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक संवाद है। अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं घोषणा की है भक्तों से मैं सखा चेती। तो जब भक्त दूसरे भक्त के साथ चर्चा करता है तो भक्ति के बारे में ही बोलता है। दो भक्त के बाद में बीच में बात करते हैं तो ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग के बारे में तो बात नहीं करेंगे, कोई भौतिक विषय की बात तो दूर है। तो जब एक परम भक्त भगवान के साथ बात करेंगे तो वो भी तो केवल भक्ति की ही बात करेंगे, वो कर्मयोग ज्ञान योग इत्यादि की बात क्यों करेंगे। तो भगवद गीता में अन्य विषयों की चर्चा भी है, इसलिए कि ये भगवद गीता की रक्षा के लिए है कि भगवद गीता को केवल वही लोग तत्व कह वास्तव में समझ पाए जो भक्त हैं। जो भक्त नहीं है भौतिक दृष्टि से भले वो कितने बड़े विद्वान भी क्यों न हो, वो समझ नहीं पाएंगे। वो तर्क करते बैठेंगे अपनी मृत्यु तक, आखिरी दम तक ये वो व्याकरण आदि इसके बारे में ज्ञान योग, इस ये योग वो योग के बारे में चर्चा करते रहेंगे और कभी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। अपना सारा जीवन व्यर्थ गवाएंगे भगवत गीता के बारे में तर्क वितर्क करके। लेकिन जो भगवत गीता का मूल है, मन मना भव मत भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु माम एवैषे पति जाने प्रियो सुने, कि हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, मेरे बारे में स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, ये भक्ति के जो नियम है इनके बारे में वो सोचते नहीं है। केवल कहीं जो कर्मियों का कुछ बताया हुआ है, कोई सांगियों का कुछ बताया हुआ है, केवल उसको लेकर उसमें अटक जाते हैं। तो ये अन्य चीजें इसलिए रखी गई हैं ताकि जो अभक्त हैं वो इन चीजों को पढ़कर भक्ति का सिद्धांत नहीं समझ पाए, भगवद गीता को ठीक से नहीं समझ पाए, क्योंकि भगवद गीता का ग्रंथ केवल भक्तों के लिए है। तो जिस प्रकार की अन्य चीजें लिखी गई हैं भगवद गीता में, भगवद गीता की रक्षा के लिए केवल ताकि केवल भक्त ही समझ पाए इसको, जो श्रद्धालु हैं, जिस प्रकार से भगवान जी एक साधारण व्यक्ति की तरह बर्ताव करते हैं ताकि अभक्त भ्रमित हो जाए और भक्त लोगों की आनंद और बढ़ जाए, जिस प्रकार से गंगा जी और जमुना जी का जल प्रदूषित होते हुए भी श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, उसी प्रकार से जो श्रद्धालु भक्त होते हैं वो वृंदावन के बाहरी दृश्य से प्रभावित नहीं होते हैं और हर समय वो जानते हैं कि वृंदावन वृंदावन ही है, वृंदावन कभी बदलता नहीं है। वृंदावन आध्यात्मिक जगत है और हमेशा रहेगा, क्योंकि समय के प्रभाव से यहाँ बहुत परिवर्तन होता है, लोगों का स्वभाव यहाँ बदल जाता है, लोगों की आदतें व्यवहार बदलता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, इमारतें आ जाती है, सीमेंट कंक्रीट इत्यादि आ जाता है, तो बाहरी दृष्टि से काफी कुछ परिवर्तन है लेकिन वृंदावन बदलता नहीं है। वृंदावन का बाहरी स्वरूप बदलता है। एक बार एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी वृंदावन में हम जब अब आए हैं तो हमें वृंदावन ऐसे नहीं दिखता जैसे कि कृष्ण के समय में था, जो हम की श्रीमद भागवत में पढ़ते हैं। और ये सही है, हम जब श्रीमद भागवत में पढ़ते हैं वृंदावन का वर्णन तो कितना सुंदर है, बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अभी तो काफी कुछ बदलाव आ गया है। तो शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि अब तो वृंदावन ऐसे नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि वृंदावन का महत्व कम हो गया, वृंदावन वृंदावन ही है, चाहे वृंदावन के बाहरी रूप में कितना ही बदलाव क्यों न आया हो, लोगों के आदतों में विचार करने की वृत्ति में कोई बदलाव क्यों न आया हो, वृंदावन में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी हमने देखा कि यहाँ इतनी गंदगी है, ये है वो है, वो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन केवल मेरा नहीं प्रभुपाद जी, सारे भक्तों ने देखा कि यहाँ कितनी गंदगी है, वो आप सबका दोष है। अगर 100 लोग कहेंगे कि 2 और 2 5 है, क्या वो सत्य हो जाता है? बहुमत से क्या सत्य की घोषणा कर सकते हैं कि ये सत्य है? नहीं। सत्य जानना है तो आपको गुरु साधु शास्त्र से जानना चाहिए। केवल आपने आपके इंद्रियों के बल पे विश्लेषण करके आपको सत्य पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले बाहर गंदगी हो, भले बाहर कुछ भी हो, लेकिन वृंदावन वृंदावन है। आपको आंखें चाहिए वृंदावन को देखने के लिए। फिर ये सब गंदगी है क्यों प्रभुपाद जी? ये गंदगी इसलिए है कि जो अश्रद्धालु हैं, उनकी आंखों के सामने ये एक माया का पर्दा है। ये वृंदावन की रक्षा के लिए है। ये योग माया का पर्दा है जिससे कि बाहरी लोग घृणा करें वृंदावन से, यहाँ से दूर चले जाएं और केवल श्रद्धालु लोग रह जाएं, जो वृंदावन धाम को समझ सके। प्रभुपाद जी कहने लगे, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में भौतिक चमक धमक इतना है कि सारे भौतिकवादी लोग आकर्षित हो जाते हैं, वाहवा करते हैं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं और बड़े बड़े सड़कें हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, तरह तरह की सुविधाएं वहां पर हैं, भौतिक जगत की चमक धमक तो वहां पर बहुत है, इसलिए भौतिकवादी लोग वहां पर आकर्षित होते हैं। तो वहां माया का पर्दा ऐसे है कि ऐसे भौतिकवादी लोगों को आकर्षित करता है, और यहाँ पर योग माया का पर्दा वृंदावन के ऊपर ऐसा है कि जो श्रद्धालु नहीं है वो छी छी करके चले जाएंगे, आएंगे नहीं, और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त है वास्तव में, वो इन चीजों को नहीं देखेंगे, परवाह नहीं करेंगे, केवल सत्य में जो वृंदावन है उसको ही देखेंगे। और एक बार जब भक्त प्रभुपाद जी के साथ किसी मंदिर में गए थे वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी कहने लगे, देखो ये मंदिरों का देख रेख ठीक से हुआ नहीं है, देखो सारी इमारतें टूट रही हैं। आप तो जानते हैं कि जितने भी यहाँ मंदिरें बनी थीं, मुगलों के समय में राजाओं ने आकर ये बहुत तोड़ फोड़ यहाँ का किया था, और उसके बाद फिर मरम्मत ज्यादा नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद जी विश्वास कर रहे थे कि मंदिरों की अवस्था कैसी है। फिर अगले दिन भक्त ने कहा कि वृंदावन की हालत ऐसे क्यों है? प्रभुपाद जी ने कहा, वृंदावन की हालत, वृंदावन तो जैसे था वैसे है, लेकिन प्रभुपाद जी आपने ही तो कहा था कल कि वृंदावन की मंदिरें काफी जो है वो ठीक अवस्था में नहीं है। वृंदावन की मंदिरें ठीक नहीं, अवस्था में नहीं, इमारतें जो पत्थर सीमेंट है वो ठीक नहीं है, लेकिन वृंदावन वृंदावन है। मंदिरों की ईंटों में बदलाव आया गया होगा, लेकिन वृंदावन में बदलाव नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग समय पर प्रभुपाद जी ने बार बार इसी सिद्धांत को जोर जोर से बिठाया कि वृंदावन धाम शाश्वत है, वृंदावन कभी बदलता नहीं है। अगर त्रुटि है तो हमारे दृष्टि में है, वृंदावन में नहीं है। इसलिए जब हम जाएंगे अभी वृंदावन में भ्रमण करने के लिए, तो हमें भौतिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हालांकि हमें नजर आएंगी वो त्रुटियां, लेकिन फिर भी ज्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए। जो वृंदावन में गंदगी फैला रहे हैं, जो वृंदावन का नुकसान करा रहे हैं भारी रूप से भी, उनको दंड मिलेगा। धाम की कृपा उनके ऊपर भी होगी अलग अलग तरह से, तो उनके बीच में, धाम के बीच में, भगवान के बीच में। लेकिन हम जब यात्री के रूप में यहाँ पर आते हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा देखना नहीं चाहिए। हमें केवल समझना चाहिए कि ये साक्षात भगवान की लीला भूमि है, भगवान से अभिन्न है। यहाँ श्री कृष्ण भ्रमण किया करते थे, गायों को लेकर, बाल बालों को लेकर। वहाँ श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे, वहाँ श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भजन किया करते थे। हमें केवल ये सब देखना चाहिए। और और बाहरी परिस्थिति जो भी हो, क्योंकि वृंदावन वृंदावन है इसलिए इसका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही वृंदावन के परिसर में प्रवेश करता है, वैसे ही वो अनुभव करने लगता है कि उसके हृदय में कुछ एक विचित्र प्रकार का आनंद उत्पन्न हो रहा है। और इसके उत्तर एक ही है, क्योंकि ये धाम है भगवान का, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो ये भगवान की एक योग माया शक्ति यहाँ चल रही है। अगर हम श्रद्धा से धाम की यात्रा करेंगे तो यही योग माया शक्ति हमें धाम को सही तरह से समझने की शक्ति देगी, दृष्टि देगी। अगर हम त्रुटियां देखेंगे तो वही योग माया जो है हमें ज्यादा त्रुटियां दिखाएंगी, और फिर हम भक्ति भाव से हटकर दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो जब भी हम जब तक हम वृंदावन में हैं, हमें सावधान रहना चाहिए कि बड़े श्रद्धा सेवा भाव से और प्रेम की भावना से हमें जगह जगह जाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शाम से हम यात्रा आरंभ करेंगे। यात्रा तो आरंभ हो ही गई, वृंदावन में तो बैठे हैं आप एक बहुत ही सुंदर स्थान में। आप सबने भक्ति विधान स्वामी गौशाला के गायों का दर्शन किया। अच्छा, आपके कोई प्रश्न है? दो तीन प्रश्नों का उत्तर लेके फिर हम प्रसाद के लिए जाएंगे मंदिर में। प्रश्न है कुछ? हाँ, हर साल प्रश्न ये है कि तीन चार दिन रुकने के बाद जाना चाहिए, तो क्या हर साल आ सकते हैं? अवश्य हर साल आते ही है, तीन चार पाँच छह दिन रुकिए फिर चले जाइए, फिर से आइए, ऐसे हर साल आते रहिए। लेकिन बाकी 360 दिन जो है वो क्या करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वृंदावन को साथ में ले जाकर अपने स्थान को भी वृंदावन बनाना है, अपने हृदय को वृंदावन बनाना है। हमने वृंदावन में कहा था ना, मोर मन। और कोई प्रश्न?
हाँ। ब्रज के क्षेत्र
प्रश्न ये है कि ब्रज के कई क्षेत्रों का नाश हो रहा है, तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जैसे तीर्थ स्थानों में कई गुफे हैं, तो बम लगाकर उनका विस्फोट किया जा रहा है, वहाँ तरह तरह के खान है, तो कुछ धातु वगैरह निकालने के लिए वो करते हैं, कई जगह पेड़ काटे जाते हैं। हाँ, अवश्य ये धाम के ऊपर एक आक्रमण है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है धाम के प्रति, और जो लोग ऐसा करते हैं उनका अवश्य बड़ा अपराध होगा, उनको दंड मिलेगा भगवान के हाथ में। तो हमें तो विरोध करना चाहिए इसका जहाँ तक हो सके, क्योंकि वृंदावन वृंदावन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो अधिकार है कि हम जाके धाम में जो चाहे वो करें, ये सोच के कि वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन के हर पेड़ हर पौधे को, वृंदावन के हर परिस्थिति को बचाए रखना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें इसके बारे में भी सावधान होना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ। क्या नाम राधा रानी? कम स्थान? माता जी को कम स्थान क्यों है? कम कहाँ, देखे ज्यादा है, ज्यादा है। कितने माता जी हैं, कितने प्रभु जी हैं, देखिए ज्यादा स्थान है। बल्कि कितना स्थान आपको लिया देखिए बैठने के लिए। यहाँ किसी को कम ज्यादा स्थान का सवाल नहीं है, सबको एक समान अवसर है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। हरेक व्यक्ति को उतना ही अवसर प्राप्त है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो कोई भेदभाव नहीं है। बाहरी रूप से क्योंकि शरीर अलग अलग है और हम अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं कि हम केवल जीव को देखें, इसलिए एक सामाजिक नीति की दृष्टि से ये भेदभाव थोड़ा आवश्यक रहता है, परंतु भेदभाव ऊंच नीच का नहीं है, भेदभाव केवल शारीरिक अंतर का है। लेकिन हरेक व्यक्ति चाहे पुरुष स्त्री और पूर्ण रूप में भक्ति कर सकते हैं। ठीक है।
आपने अभी बोला कि तीन दिन वृंदावन में रहने से फायदा कौन सा होता है, छह दिन रहने से फायदा, तो जगन्नाथ प्रभु दस दिन रह गए इधर, अभी तो आप इधर ही रहते तो इसका फायदा
कैसा?
तीन दिन का मतलब है कि हाँ चार दिन पर थोड़े दिन, कहने का मतलब है कि ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने पहले कहा जब तक कि आदेश न हो, हमने उदाहरण दिया था चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग आदेश दिए, शरदास गोस्वामी को उन्होंने कहा हमेशा रहिए और जगदानंद पंडित से कहा तीन दिन रुकिए, तो जैसे हमें आदेश मिलता है वैसे हमें रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ही यात्रा के लिए आते हैं तो थोड़े दिन रह सकते हैं, बड़े तीन दिन चार दिन दस दिन फिर हम चले जाएं। ठीक है।
वृंदावन में वृंदावन में रह के ही ऐसे मिलता है,
वृंदावन में रह के पाप करने से अपराध करने से एक पशु का शरीर वृंदावन में ही मिलता है, चलिए एक शरीर में एक जीवन में रह के उसके बाद भगवान के सामने जाने का अवसर मिलता है। ठीक है। वृंदावन को ब्रज भूमि क्यों कहा गया है? ब्रज मतलब गोचर भूमि, ब्रज मतलब ये भी कि यह पूर्ण रूप में ब्रह्म है, यह रज, इसका रज पूर्ण ब्रह्म है, या तो फिर क्योंकि ये गोचर भूमि है जहाँ कृष्ण की गाय चरती है इसलिए इसको ब्रज कहते हैं, ये कारण तो ब्रज और ब्रज भूमि। और कोई प्रश्न? और देवी चक्षु कब मिलेंगे? जब हम वृंदावन को पहचान सकें, वो हमारे तीव्रता के ऊपर, कब हमारी हमारा हृदय शुद्ध होगा, जितनी तीव्रता से हम प्रार्थना करेंगे उसमें जल्दी हमें दृष्टि मिल जाएगी। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको दो दिन में मिले चार दिन में मिले, जितनी तेजी से हम प्रगति करेंगे उतनी जल्दी मिल जाएगी। तो हमें हमेशा ऐसे भाव में रहना चाहिए, कृपा याचना भगवान के धाम की करते रहना चाहिए जिससे कि दृष्टि हमें मिले। वृंदावन में सब स्थान पर अनेक जीव दिखाई देते हैं, जैसे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ कई चीटियाँ हैं, वे शांति से हमारा पांव गिरने मर जाते हैं, तो क्या उस अपराध का फल भी कई गुना होता है? जाने अनजाने में तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पाप करता ही करता है, तो कम से कम हम ये देखें कि हम जानबूझ के कुछ नहीं करें, और खास करके वृंदावन में अगर अनजाने में ऐसे कुछ हो भी जाता है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए ध्यान की कृपा याचना करनी चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती हो भी गई क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे अगर अपराध हो गए तो हमें क्षमा कीजिए। ऐसी भावना रखने से हम मुक्त हो जाएंगे, और ऐसे अपराधों से मुक्त होना है तो वृंदावन में ही हो सकता है। वृंदावन में किए वो पाप अन्य जगह उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 11 साल वृंदावन में लीला की है और कई साल द्वारका में लीला किया, तो द्वारका का इतना महत्व क्यों नहीं है जितना कि वृंदावन का है? अभी आप बताइए, आपने सुना है सारे गुह्य लीलाएं यहाँ पर हुई है वृंदावन में, क्योंकि ये भगवान का निजी गुह्य धाम है। द्वारका भी धाम है लेकिन ये गुह्य धाम है, और जो यह माधुर्य है उसका एक कण भी अन्य किसी स्थान में नहीं पाया जाता है। इसलिए वृंदावन का माधुर्य बहुत ही निराला और विशेष है। हम जब धाम में हैं सारे भक्तों के साथ तो भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना बहुत सरल है, परंतु जैसे ही हम वापस जाते हैं तो हमारे इतने सारी जिम्मेदारियां हैं सर के ऊपर, तो इसी भाव को बनाए रखना कैसे संभव होगा हमारे लिए अभ्यास से, प्रैक्टिस। जो आप अब यहाँ कर रहे हैं वहां जाकर भी आप कर सकते हैं। क्या है वो जो चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें बताई थी, हमने आपको सुनाया था प्रवचन के शुरुआत में, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन, अर्च विग्रह की सेवा। तो मथुरावास मतलब क्या? बेलगाम में मथुरावास क्या है? राधा गोकुलानंद मंदिर, क्योंकि वो भी वैकुंठ ही है, वहां भी राधा गोकुल आनंद निवास करते हैं, तो वो भी गोकुल है। भगवान का मंदिर वो भौतिक नहीं माना जाता, जो शराब का अड्डा आदि है वो तमगुण में होता है, जो शहर होता है वो रजगुण में होता है, जो वन होता है वो सत्वगुण में होता है, लेकिन भगवान का मंदिर, भगवान विष्णु या कृष्ण का मंदिर वो तीनों गुणों से परे होता है, वो साक्षात वैकुंठ होता है। इसलिए मथुरावास मतलब श्री राधा गोकुलानंद के मंदिर में जाना, वहां पर ये 4 चीजें करना, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और मूर्ति सेवा। ऐसा आप करते रहेंगे तो इसी भाव को बनाए रख पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप सब उठिए और उसके सीधे राधा श्याम सुंदर के मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में जाइए, वहाँ प्रसाद पंडाल में आप प्रसाद पाइए, फिर विश्राम कीजिए और फिर 3 बजे हमारी अगली परिक्रमा शुरू होगी। और हाँ, जाने के पहले लौटने को भूलिए मत। हरे कृष्ण। जो वृंदावन धाम की जय, प्रभुपाद की जय।
समर समर उसको सामने खींचे।
हरे कृष्णा। सभी बच्चों से निवेदन है, एक थोड़ा 5 मिनट बैठेंगे, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सभी बच्चों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक